من سلی علی رسول کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، اگرچہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی لیکن محسوس یوں ہوتا ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں اور حکایتیں، روایتیں، کہانیاں جو کچھ ہم سنتے رہے بچپن سے، اس کا اثر ہمارے ذہن پر بہت گہرا ہوتا ہے. ہم میں سے بڑی اکثریت ان حضرات کی ہے بمائے میرے جنہیں روحانیت کہ اصل کنسپٹ کا کوئی ادراک نہیں ہے. روحانیت کے اصل مقصد کا اندازہ نہیں ہے. ہم اس کے بارے میں جتنا مرضی لوگوں سے مشورے کر لیں، سوچ سمجھ لیں، لیکن روحانیت کے بارے میں کنسپٹ ہمارا وہیں رہتا ہے کہ روحانیت کا حاصل حصول صرف ایک ہے کہ ہمیں کشف و کرامات حاصل ہو جائیں. اور اگر ہم اپنے ذہن کو کھنگالیں اور گہرائی سے خود اپنا مطالعہ ہم کریں تو ایک عجیب سی بات سامنے آئے گی. اگر ہم دیانتداری سے اپنا تجزیہ کر سکیں کہ روحانیت کے پیچھے ہم دوڑتے کیوں ہیں، پتہ ہی چلے گا کہ ہمارے سب کانشیس میں کہیں ایک بات یہ موجود ہے جو بچپن سے ہم کتابوں میں پڑھتے رہے، بزرگوں سے سنتے رہے کہ دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہمارے دنیاوی کام آسانی سے ہونے لگیں گے. یہ ہم سب کے لاشعور میں ایک بات بیٹھی ہے. مزہ یہ ہے کہ آج تک کبھی ہمارا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ جس راہ پر چل کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی، دنیا کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ہم نقصانات سے بچے رہیں گے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے، ہمارے کام اٹکیں گے نہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس جا کے ہم بیٹھتے ہیں کہ ان سے ہم روحانیت کا سبق لے لیں، وہ بیچارے دنیاوی لحاظ سے بالکل تہی دامن ہوتے ہیں. تو اگر روحانیت ہمارے لیے دنیا کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے تو یہ روحانی لوگ دنیاوی لحاظ سے اس طرح سے تہی دامن کیوں دکھائی دیں؟ کبھی ہم نے اس بات کو نہیں سوچا. در حقیقت रूहानियत हासिल कैसे होती, इस मौजू पे बहुत मरतबा यहां हमारी बात हुई। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, आसान लफ्जों में हम अगर कहें जो इंसान अपनी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर लेता है, अपनी ख्वाहिशात को दबा सकता है, अपने मुख्तलिफ जज्बों पर हावी हो सकता है और अपने तमाम रवैयों को वो सुन्नत के मुताबिक ढाल लेता है या सुन्नत के बहुत करीब चला जाता है, क्योंकि शायद सुन्नत के मुताबिक ढालना तो हमारे लिए इतना कोई आसान न हो, लेकिन कम से कम हम सुन्नत के इतना करीब जा सकते हैं जितना ह्यूमनली पॉसिबल हो। तो इससे होता क्या है, सुन्नत के मुताबिक अपने आप को ढाल लेने से रूहानियत कैसे हासिल होती है? पहली बात तो यह है कि रूहानियत का मकसद हमारे जहन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि रूहानियत के हसूल का मकसद हमारा क्या है, कि हमें कुर्ब इलाही हासिल हो जाए, हम रब को अजीज हो जाएं। अब ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा रूहानियत को हासिल करने का, उसमें दुनिया कहीं नहीं है, वहां सिर्फ एक सिंगल पर्पज है और वो है कि रब हमें अपने करीब कर ले, रब हमें अजीज रखे। अब उसका रास्ता हमारे पास देखना होगा कि आसान तरीन रास्ता क्या है, जहां गलती का इस्तेमाल ना रहे, हम मिसगाइड ना होने पाए। तो वो आसान तरीन रास्ता ये है कि हम अपने अमाल को, अपने अफाल को, अपने रवैयों को हम सुन्नत के मुताबिक ढालना शुरू कर दें। आम लफ्जों में कि हम अतबाए सुन्नत कर लें। बहसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा वो कुरान की अमली तफसीर है, कुरान की अमली एक्सप्लेनेशन है, कुरान के अमली मायने, ये हमारा ईमान है। और इसमें शक भी कोई नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ऐन कुरान के मुताबिक। तो जब हम अपने अमाल को, अपने अफाल को, अपने रवैयों को सुन्नत के ऐन मुताबिक करने लगते हैं, या कम से कम उस एक्सटेंट तक ले जाते हैं जो ह्यूमनली पॉसिबल है, तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज होने लगते हैं। वैसे तो उम्मती के बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मां बाप को अपने तमाम बच्चों में से वो बच्चा बहुत ज्यादा अजीज होता है जो उनके नक्श कदम पर चलता है, उनके इशारों पर चलता है, उनके अहकाम की पैरवी करता है। और जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीज हो गया, वो रब को अजीज हो जाएगा, इसलिए कि वो बंदगी के उस मकाम पर है जहां रब पसंद करने लगता है अपने बंदे को, तो यूं कुर्बे इलाही हासिल हो जाएगा। ये शैतान हमें 100 तरीकों से बहकाएगा, बड़े बड़े खूबसूरत जस्टिफिकेशंस हमारे सामने ले आएगा कि हमारे रवैये अतबाए सुन्नत से हटने लगे हैं। मैं और आप सुबह शाम हजरत अली करमल्ला वजहू का वो कॉल रटते रहते हैं, लोगों के सामने बयान करते रहते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, कि मोमिन की तारीफ क्या है। जनाब हजरत अली करमल्ला वजहू की फरमान के मुताबिक जो निशानी हजरत अली करमल्ला वजहू ने मोमिन की बताई वो ये है कि मोमिन वो है जिसे न कोई चीज पाने की खुशी हो न कोई चीज खो जाने का गम। लेकिन शैतान हमें उस तरफ को ले जाएगा कि अगर मेरे 10 रुपए कहीं यहां गिर जाएं तो आप देखेंगे कि मैं उस जगह से 3 दिन उठूंगा ही नहीं, कि यहां मेरे 10 रुपए खो गए थे, शायद किसी वक्त मिल जाए मुझे। और वहां बैठा हुआ 10 रुपयों के इंतजार में मैं लोगों को ये कह रहा हूंगा कि भाई मोमिन की तारीफ यह है कि जिसे कुछ पाने की खुशी ना हो और खो जाने का गम ना हो, लेकिन उस गम में वहीं बैठा हूं 3 दिन तक मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, वो एक साहब आए, उन्होंने कहा कि उनके घर में कुछ चोरी हो गई, तो मुझसे मिले पड़ोसी की हैसियत से कि हम जहां आप रहते हैं 5-6 घर छोड़कर हम रहते हैं, बिस्मिल्लाह ये सराखों पर तशरीफ रखिए। मैं कहा जी मेरे यहां कुछ चोरी हो गई, जितने घर में मुलाजिम हैं उनको पुलिस से हर हर तरीके से पिटवा लिया, लेकिन पता नहीं चल रहा कि उन नौकरों में से चोरी किसने की है। तो मैंने उनसे कहा कि हजूर आपने अपना तारीफ कराया, कुछ नाम से अंदाजा ये हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान हैं। मुझे ये तो बताइए कि इस्लाम के किस कानून और कायदे की रूह से आपने सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें से चोर कौन है बेगुनाहों को भी पिटवा दिया। आपने सबको शक किया, उसका गुनाह हुआ आपको। तो ये जो बेगुनाह लोगों की थाने में चीखें गूंजी होंगी मार खा के, आप ये समझते हैं कि उनकी इतनी भी कीमत नहीं जितना सामान आपका चोरी हो गया। मुसलमान के लिए तो मुलाजिम के पसीने पे पेशानी पे पसीना आने जो ये सुनकर के मालिक उस पर शक कर रहा है कि उसने चोरी की, तो जो पसीना उसके माथे पर आ जाएगा उसकी कीमत आपके खोए हुए माल से हजार गुना ज्यादा है। मैंने उनसे अर्ज की कि मैं और आप दोनों ही इस चीज के दावेदार हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, कि आप समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां कोई चीज चोरी हो जाती तो वो अपने किसी गुलाम पर शक करते हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया तो जिंदगी भर ये रहा कि उनके किसी बात से उनके बदतरीन दुश्मन को भी शर्मिंदगी ना हो। इसके लिए जरूरी यह है इस मकाम पर आने के लिए कि हम इंसानियत का एहतराम इस दर्जे का करने लगे कि हमारी किसी बात से किसी को दिल में भी शर्मिंदगी महसूस न हो। इस मकाम पर आने के लिए हमें अपने छोटे छोटे रवैये और छोटे छोटे अफाल उनको सुन्नत के मुताबिक ढालना होगा। जो अक्सर बेशतर यहां मैं अर्ज करता रहता हूं कि हम किसी भी चीज पर अपना रिएक्शन शो करने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले, अगर जरा सा हम जहन दौड़ा लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की तमाम डिटेल्स हर मुसलमान के जहन में ताजा होती हैं, हम ये देख लें कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अमल फरमाया, खामोशी से उस पर अमल कर लिया जाए, मसला हल हो गया। हम अगर यहां से स्टार्ट हो जाएं इस पॉइंट से और बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन अपने ऊपर हम लागू कर लें कि हमने अपनी हर जिंदगी का हर शोबा, हर फेल, हर रवैया उसको सुन्नत के मुताबिक ढालना है तो हमारी रूहानी तरक्की शुरू हो जाएगी, हम ऊपर को जाने लगेंगे। लेकिन इसके अंदर खतरात होते हैं, ये जो हम रूहानियत के मदारिज तय करते हैं इसमें बहुत से खतरात छुपे होते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से कि जो लोग पहाड़ी चोटियां सर करते हैं, पीक्स को स्केल करते हैं, हमने देखा कि वो बड़े टिपिकल शेप के और सोल के शूज पहनते हैं जिसमें स्पाइक्स होते हैं, फिर वो रस्सों से भी मदद लेती हैं, उनके पास एक हैमर होता है खास, उस हैमर से मदद लेते हैं कि वो नीचे न गिरने पाए वापस। ये वो मकाम है जहां आपका गाइड काम आता है, आपके जिस गाइड से आप मुंसलिक हैं वो ये स्केलिंग गियर का काम करता है। वो आपको वापस गिरने नहीं देता, जहां आप गलत पांव रखने लगते हैं, जहां आपके गाइड को अंदेशा होता है कि स्लिप कर जाएगा, वो वहीं आपको वार्न करता है, वॉच योर स्टेप, तो इंसान संभल जाता है। लेकिन यहां एक और मुसीबत आती है बहुत, कि इंसान के अंदर के आना उस डांट को बर्दाश्त नहीं करने देती, वो जो वार्निंग देता है उससे इंसान की अना मजरूह होती है। इसीलिए आपका गाइड सबसे पहले आपके अना को खत्म कर देगा और अना को कुचलने का तरीका उसके पास यह है कि बहुत सी लोगों की मौजूदगी में वो आपके नकायस बयान करें। हालांकि सुन्नत ये कहती है कि दूसरे शख्स के नकायस उसको तन्हाई में बताए जाएं, लेकिन वो गाइड एक आला मकाम पर फाइज होने के बावजूद पब्लिकली आपके नकायस पर आपको शर्मिंदा करता है। ये कभी ये बात समझ में नहीं आती थी हमारे, लेकिन रफ्ता रफ्ता समझ में आने लगी कि ये मुर्शिद हजरात ये जितना कोई दुनियावी तौर पर आला ओहदे पर फाइज है, बाइज्जत है, उतना ही उसको पब्लिकली रगड़ते क्यों हैं, वो तो बहुत बाद में समझ आई। सिर्फ समझ आई है, अना को खत्म करने पे आज भी मैं तैयार नहीं। सर रवैया समझ आया कि ये मुर्शिद हजरात ये करते क्यों हैं। तो वो मुर्शिद सबसे पहले आपकी अना आपके अंदर से निकाल देगा, फिर जब वो मना करता है तो फिर अना मजरूह नहीं होती, फिर इंसान उसको खुशी से कबूल कर लेता है। तो चोटी सर करने वाला आदमी जब चोटी पर पहुंच जाता है फिर उसके नीचे गिरने का कोई इम्कान नहीं, एहतमाल नहीं है। ये बिल्कुल इसकी एक मिसाल मौलाना रोम ने बड़ी अच्छी दी। अंगूर कच्चा होता है तो उसको गोजा कहते हैं, लेकिन वो बेल पर लगा हुआ अपने गुच्छे में रफ्ता रफ्ता पक जाता है जब, तो फिर वो अपनी साबका हालत को लौट नहीं सकता। पका हुआ अंगूर कभी दोबारा से कच्चे अंगूर की शक्ल नहीं अख्तियार कर सकता। तो आपका जो गाइड है, आपका मुर्शद आपको उस मकाम तक गाइड करता हुआ ले जाता है, वहां जाके खड़ा कर देता है जहां आपके गिरने का इम्कान नहीं रहता कि आप स्लिप हो जाएं दोबारा से, वो नहीं होता। तो ये रूहानी मदारज जिस तरह से आदमी तय करता है, लेकिन जब तक के उस मकान तक नहीं आता आदमी को गाइड की जरूरत है, मुर्शिद की जरूरत है। मुर्शिद को हमने एक कोई माफाकुल फितरत किस्म की का मकाम दे दिया कि मालूम नहीं वो बेचारा क्या चीज है, वो तो गरीब हमारी तरह का मजबूर इंसान है जो अल्लाह के दर पर बैठा है, अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कमर पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने पर वो कादर नहीं है। हम उसको मालूम नहीं क्या बना देते हैं गरीब को। नतीजा ये है कि जब वो हमारी उम्मीदों का और एक्सपेक्टेशंस का मीनार धड़ाम से जमीन पर गिरता है तो हम कहते हैं कि वो तो मुर्शिद ही गलत था सर। हम ये नहीं कहते कि हमने तवक्कात उससे वो वाबस्ता कर ली थी जो सुपर ह्यूमन की थी, और मुर्शिद तो बेचारा ह्यूमन बीइंग था, सुपर ह्यूमन तो था ही नहीं। तो ये मदारिज जो हैं हमें रूहानियत के तय करना होते हैं, उसके बगैर हम नहीं जाते, उसके बगैर हम फिसलते चले जाते हैं वापस जहां से चले थे, बाज़ुकात उससे भी नीचे गिरते हैं हम। वहां पे इंसान को बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि मैं फिसलने ना पाऊं, और आप मुर्शिद की वॉचफुल आई के नीचे रहते हैं। वो हर वक्त आपका निगरान होता है और वो अपने ढब से हर मुर्शिद का अंदाज एक डिफरेंट है। मैंने शायद पहले भी कहीं अर्ज किया था कि 70s में एक मेरे कॉलीग थे, वो जब कभी मुल्क से बाहर टूर पे जाते थे तो हमें उन दिनों $200 पर डे गवर्नमेंट देती थी अलाउंस होटल एक्सपेंस के अलावा। तो अब वो हम लोग गए हफ्ते 10 दिन के लिए, वो अलाउंसेस उसमें खाना पीना भी है हमारा, बच्चों की शॉपिंग भी करके आते हैं, तो वो गरीब अल्लाह उसका भला करे, अल्लाह उसको इसकी जजा दे। बेचारे जब भी जाते थे तो भुट्टो साहब जो सिगार पिया करते थे वो कुबा का था, और उस वक्त ये कहा जाता था, मुझे तो इतनी मालूमात नहीं है शराब और सिगार के बारे में, कि उस सिगार की कीमत $100 है, ये 70s की बात कर रहा हूं। तो आमतौर पर बेचारे अपने अलाउंस में से एक या दो सिगार मेरे लिए ले आते थे, तो वो एक सिगार में पकड़ के पी लेता था, लेकिन ये साल दो साल में एक बार ही होता था कभी। मेरे साथ एक साहब उन बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए जिनके पास मैं जाके बैठता था, तो मुझसे उन्होंने फरमाइश की कि ले जाओ, जहां तुम जाके बैठते हो मैं भी जाऊंगा, आ जाइए। हम गए तो वो बड़े शाह साहब ये देख के कि मेरा मेहमान है, उसकी बड़ी औभगत की, इज्जत से बिठाया। तो बातों बातों में उसको कहने लगे कि मियां बात यह है कि रूहानियत का सफर खोटा होता है, अगर इंसान सिगरेट पी रहा हो तो उसकी जो स्मेल है, उसका जो धुआं है, वो इंसान की रूहानियत की राह को खोटा करता है, रुकावट आती है परवाज में। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि सिगरेट की स्मेल बुरी है, लेकिन सिगार की स्मेल बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो चाहे इंसान साल दो साल में एक सिगार ही क्यों ना पिए, उसकी स्मेल भी रुकावट डालती है। वो कहा उन्होंने मेरे साथी को था जिसको मैं लेके गया था, मैं समझ गया कि वो कहा मुझे जा रहा है। तो उसके बाद जब कभी वो साथी मेरे सिगार लेके आए, मैंने उसी तरह लोगों में बांट दिए। एक अंदाज मुर्शिद का ये भी था। दूसरा अंदाज ये था कि कुछ रूहानी मामला था, तो कई साल से मैं उसको हर जुमे उस रूहानी मामले को एनकाउंटर करता था, पेश आता था वो। तो एक दिन मैंने देखा मस्जिद से निकलते हुए जुमे की नमाज के बाद के बड़े शाह साहब का मूड बड़ा खुशगवार है, तो मैंने मौके से फायदा उठाया। मैंने कहा हजूर, हर जुमे को जब फर्ज नमाज के बाद में तो मुझे ये कुछ होता, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो वहीं रुक गए और बड़े गुस्से से टेढ़ी आंख करके मुझे देख के कहने लगे, एक तो तुमने मुझे बहुत तंग किया है। तो मैंने कहा आई एम सॉरी सर, ठीक हो गया मामला। ये खूबी बड़ी जबरदस्त थी मुर्शिद साहब की कि अगर पलट के किसी ने फौरन सॉरी कर लिया तो वो भूल गए फिर, तो मूड ठीक हो गया सॉरी कहने से। अब ये एक दूसरा अंदाज था। तो पता ये चला कि वो रूहानियत के जिस मकाम पर बैठे हैं और जो कुछ उनके मुर्शिद ने उन्हें सिखाया है और उनके अपने रवैये अपने मुर्शिद साहब के साथ जो रहे हैं, वो ये हैं कि न तो कभी जिक्र का जिक्र करना है कि मैं ये जिक्र करता हूं, आपने मुझे ये जिक्र बताया, मैं करता हूं। और उस जिक्र के दौरान जो कुछ आपको महसूस हो, जो कुछ आप के साथ वारदात पेश आए, जो मुशाहिदा हो आपका, उसका जिक्र भी नहीं करना। अब उस पर डांट पड़ गई, तो एक अंदाज वो भी था। तो ये जब तक इंसान रूहानियत में आगे चल रहा होता है और उस मकाम तक, उस पॉइंट तक नहीं आता कि जहां फिसलने का इम्कान खत्म हो जाए, तो मुर्शिद की ही ज़ेर निगरानी रहना चाहिए कि वो कदम कदम पर आपको टोकता जाए। और जहां वो इम्कान खत्म होता है, वहां फिर आदमी कंफर्टेबल हो जाता है कि अब वो पुरानी कैफियत को नहीं जाएगा, या दुनियावी जुबान में फिसल कर जहां से शुरू हुआ था वहां तक नहीं जाएगा। जैसे मैंने अंगूर की मिसाल दी, एक और वली अल्लाह ने इसकी मिसाल यूं दी थी कि उस मकाम पर पहुंचकर आदमी इस तरह हो जाता है जैसे पिसे हुए आटे को गूंदने के बाद उससे रोटी पकाई जाए, और फिर हम ये चाहें कि वो पकी हुई रोटी आटे की कैफियत को लौट जाए, वो मुमकिन नहीं है। तो जब आदमी रूहानियत के ऐसे मदारिज तय कर लेता है जो इब्तदाई हैं, तो उसका सफर फिर रियल सफर शुरू होता है रूहानियत का। तो वहां से आगे फिर मुमकिन नहीं होता कि वो फिसल जाए, वापस चला जाए। लेकिन जब तक के उस मकाम तक नहीं आता, उसको बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है कि शैतान मुख्तलिफ किस्से, मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस, मुख्तलिफ चीजों का रंग हमें दिखा के बहका ना दे। और हमारे पास जो सबसे अच्छी यार्डस्टिक है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर क्या अमल फरमाया, वो यार्डस्टिक है, वो क्राइटेरियन है, कसौटी है हमारे पास। तो शैतान जो मर्जी हमें दिखाता रहे, जो मर्जी कहता रहे, हम उस पर अगर परख लें तो रूहानियत का सफर जारी रहता है। किसी साहब ने एक सवाल किया कि दुआ कराना सुन्नत है, फिर अपने मुर्शिद के अलावा किसी बुजुर्ग से दुआ कराने से मना क्यों किया जाता है। इंसान जब बीमार हो तो उसका इलाज कराना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बीमार हो तो अपना इलाज कराइए। अब आपने किसी भी शख्स ने एक डॉक्टर को पकड़ा, उससे इलाज कराना शुरू किया, उससे दवा ली, एक खुराक खाई, तो गुजरते हुए एक और डॉक्टर का बोर्ड दिखाई दिया, उसके पास चले गए कि मुझे ये बीमारी है, दवा दे दो। उसने अपनी समझ के मुताबिक डायग्नोज किया, अपनी समझ के मुताबिक दवा प्रेस्क्राइब कर दी, उसकी भी एक खुराक आपने खा ली, फिर एक डॉक्टर दिखाई दिया, उससे दवा ले ली, वो एक खुराक खा ली, अब उस तीसरे डॉक्टर ने अपनी समझ के मुताबिक डायग्नोज किया, प्रेस्क्राइब किया। तो आप क्या समझते हैं कि वो मरीज जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास जाके दवा लेता रहे, वो कभी ठीक हो सकेगा, तंदुरुस्त हो सकेगा? तो जब आप किसी को मुर्शिद मानते हैं, उनके पास जाके बैठ जाते हैं, अंडर ट्रेनिंग होते हैं उनके, आप उनका अपना एक असलूब है बंदे को ट्रेन करने का, जैसे आप बच्चा अपना किंडरगार्टन में डालते हैं, उसका अपना एक सिलेबस है, अपना एक तरीका कार है एजुकेशन इम्पार्ट करने का। दूसरा मॉन्टेसोरी सिस्टम है, उसका अपना एक सिलेबस है, अपना एक असलूब है बच्चे को ट्रेन करने का। आप पब्लिक स्कूल में उसे डालते हैं, वहां अपना एक अलहदा है। ग्रामर स्कूल में डालते हैं, उसका अपना एक अलहदा अंदाज है। गर्चे मकसद सबका एक है, तालीम। तो अगर वो किंडरगार्टन में पढ़ रहा है और ट्यूशन ले रहा है मॉन्टेसोरी वाले टीचर से, तो स्वाय कन्फ्यूजन के क्या होगा। तो जब हम अपने मुर्शद से ट्रेनिंग ले रहे हैं और किसी और बुजुर्ग के पास चले जाते हैं, वो बुजुर्ग अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, वो अपने मकाम पर हैं, तो जब हम उनसे दुआ कराते हैं तो हम उनसे सीखने लगते हैं। अब जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो तो आपके अपने मुर्शद के अंदाज से हो रही है, अब यहां से भी सीखना शुरू किया आपने, तो कन्फ्यूज का शिकार हो गए आप। तो जब कन्फ्यूज का शिकार हुए तो फिर कहीं ना पहुंचा इंसान। इसलिए कहा जाता है कि मदद के लिए सिर्फ अपने ही मुर्शद के पास जाइए, दूसरे बुजुर्गों के पास जाइए, उन्हें सलाम कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए, जो कुछ हिम्मत है सकत है आप में। लेकिन न तो उनसे कुछ पढ़ने को मांगिए, न उनसे दुआ के लिए कहिए, ताकि आप उधर मायल ना हो सकें। ये हिकमत है मना करने से, वरना दुआ के लिए कहना तो सुन्नत है। लेकिन राह का फर्क है, किसी साहब ने पूछा है कि सूरत और मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने मौत और हयात को तखलीक फरमाया, यहां मौत के लफ्ज को हयात से पहले लाने में क्या हिकमत है। इसकी दो तौजीहात हैं। हर चीज अल्लाह से इस दुनिया में आती है, अपना वक्त मुकर्रा यहां गुजार कर रब की तरफ वापस चली जाती है। तो वो जो हयात है, जहां इस आलम असबाब की हयात में आने से पहले वक्त गुजारा है और इस दुनिया से चले जाने के बाद फिर वही वक्त गुजार रहा है अल्लाह ही की तरफ जाके, तो उसका जिक्र पहले आएगा। मौत क्या चीज है? अबदी जिंदगी की इब्तदा। तो यूं उसका जिक्र पहले आएगा और हयात दुनिया का जिक्र बाद में आएगा। एक तो इसकी तौजीह यह है। दूसरी तौजीह यह है कि फना को बका है, बका को फना है, तो ज्यादा सुपीरियर क्या है जिसको बका है। तो हिस्ब मरातब में पहले जिक्र किस चीज का आएगा जो ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि इंसान मौत का जायका चख के अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। तो यूं मौत का जिक्र पहले आता है। किसी साहब ने पूछा कि दरूद शरीफ कितनी तादाद में रोजाना पढ़ा जाए कि कसरत में शुमार हो। दिल में विर्द रखिए अपना काम करते हुए भी, लोगों से बात करते हुए भी, तो वो कसरत में शुमार हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि जिस किसी का तरबियत का हिस्सा जिसके पास हो वो उसे मिल जाता है, ये कैसे पता चले कि उस्ताद कौन है? नीज अगर हिस्सा न हो तो क्या उसे किसी तरीके से जनरेट किया जा सकता है? जहां इंसान का हिस्सा है रब ताला उसे घेर घार के वहां पहुंचा देता है, इंसान की अपनी एफर्ट को उसमें कमी दखल होता है, कोई ना कोई असबाब रब ताला बना देगा, क्योंकि ये तो आलमुल असबाब है। रब ताला जमीन पर नहीं उतरता कभी काम करने के लिए, वो असबाब पैदा कर देता है। तो असबाब खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं कि इंसान वहां चला जाए जहां उसका हिस्सा है, लेकिन वो गलती ना कीजिए जो गलती मैं करता हूं आज तक, कि मैं इसी इंतजार में बैठा हूं कि जहां मेरा हिस्सा है वो मुर्शद साहब मिलेंगे, मेरी ट्रेनिंग करेंगे, मैं नेक हो जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले तो मैं वो हर काम कर लूं जिसकी हसरत है मेरे दिल में, फिर आदमी नहीं पहुंचता कभी वहां। तो नेकी की राह पकड़े रहिए, इबादत की राह पकड़े रहिए, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। रब ताला खुद आपको वहां तक पहुंचा देगा जहां आपका हिस्सा है। किसी साहब ने अपना जाती जिंदगी का कुछ मसला लिखा है जो मैं पढ़ूंगा नहीं ताकि पर्दा रह जाए। बहसियत मुसलमान के मेरा ईमान ये है और हर मुसलमान का ईमान यही है, रब ताला सबसे बड़ा गफूर रहीम है, उससे बढ़कर गफूर रहीम कोई नहीं है। यह भी हमारे ईमान का हिस्सा है कि रब ताला तो मौके ढूंढता है कि इंसान कहीं जरा सी जुबान हिलाए मुझसे माफी मांगे, मैं उसे माफ कर दूं। रब ताला को सजा देने से ज्यादा माफ कर देना पसंद है। हमसे जिंदगी में कितनी ही बड़ी गलतियां क्यों ना हुई हों, अगर हमें ये मालूम हो कि किस इंसान की गलती हमने की, उस गलती का ताल्लुक किस इंसान से था, किसको हमारी उस गलती से दुख पहुंचा, नुकसान पहुंचा, तो हम उस इंसान के पास चलकर चले जाएं और जाके उससे माफी मांग लें और उसका मदावा करने की कोशिश करें। अगर उसका नुकसान हुआ था हमारी किसी गलती से तो उसका नुकसान हम पूरा कर दें, बल्कि नुकसान से जरा ज्यादा माफी भी मांग लें और उस नुकसान को होने वाले नुकसान से जरा ज्यादा पूरा भी कर दें। और अगर किसी का दिल दुख गया था तो उससे माफी मांग लें और तमाम उम्र हम उसके मदावा के तौर पर उसकी दिलजोई करते चले जाएं। रब ताला बड़ा रहीम व करीम है, माफ फरमाने वाला है, तो जब उसके बंदे ने माफ कर दिया तो रब भी माफ कर देता है। मैं एक अजीब सी चीज बहुत पुरानी पढ़ी थी, अल्फाज वो नहीं है हदीस के, मैं अपने अल्फाज में वो हदीस बयान कर रहा हूं, कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं हो सकता वो रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। अब आप देखिए बंदों को किस मकाम पर ले जा बिठाया रब ने। तो हम अगर ये चाहते हैं कि रब हमसे राजी रहे तो हम उसके बंदों को राजी रखें। अगर हम उससे माफी मांग लें जिसके कसूर हमने किया है तो हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारा रब इतना मेहरबान और रहीम और करीम और गफूर और रहीम है कि वो फौरी तौर पर माफ कर देगा। और दूसरी बात यह है कि रब का एक वादा है कि मुझसे अच्छे गुमान रखो मैं अच्छा ही करूंगा। तो हम अपने रब से अच्छे गुमान रखें वो वैसा ही सलूक करेगा हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला। किसी साहब ने पूछा है कि सप्लीमेंट है सेंट्रम, उसकी टैबलेट्स में जेलेटिन की मिकदार भी है कि क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत आसान हो गया मामला, मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की टोटल पॉपुलेशन का 20% हो जाने की वजह से तमाम मैन्युफैक्चरर्स इस चीज की एहतियात करते हैं कि वो हलाल और हराम में फर्क। इसीलिए पिछले कुछ सालों से जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं अपनी वो तमाम प्रोडक्ट्स जिसके अंदर इस किस्म की ममनुआ चीजें हैं जिसको मुसलमान इस्तेमाल नहीं करते उसको वो नुमाया तौर पर मेंशन करते हैं उसमें, और उसके साथ साथ अलॉन्ग साइड दैट जेलेटिन फ्री टैबलेट भी देते हैं और उसके ऊपर लिखा होता है जेलेटिन फ्री। बाकी तमाम चीजें वही हैं, तो आप जेलेटिन फ्री सेंट्रम ले लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको उसको हासिल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो सेंट्रम से एक बेहतर प्रोडक्ट मौजूद है उसमें जेलेटिन फ्री टैबलेट भी आती है वो है फार्माटोन, वो इस्तेमाल कर लीजिए, उसके रिजल्ट सेंट्रम से ज्यादा बेहतर मिलेंगे इसलिए कि वो स्टमक पर बड़ी सॉफ्ट है, स्टमक खराब नहीं करती। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।